हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 168 आदित्य की नज़दीकी की वजह से ना चाहते हुए भी सुनैना की आँखें बंद हो गई थीं। आदित्य तो वैसे भी सुनैना से इतनी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ज़्यादातर वो खुद पर काबू खो देता था और ना चाहते हुए भी सुनैना के करीब आ जाता था। आज भी वही हो रहा था। आदित्य आगे बढ़ते हुए सुनैना के चेहरे में खोसा गया और भूल गया कि वे दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। विराज के नाम पर उन दोनों पर मदहोशी छा जाने लगी थी। आदित्य सुनैना के खूबसूरत चेहरे पर आते हुए उसके काले बाल अपने हाथ से किनारे करता हुआ अपना चेहरा सुनैना के चेहरे के एकदम सामने ले आया। उसके दल दिमाग में जंग चलती रही कि वो सुनैना के करीब जाए या नहीं, उसे प्यार करे या नहीं, प्यार से उसके होठों को अपने होठों के आगोश में ले या नहीं। लेकिन आखिरकार उसका दिल दिमाग पर हावी हो गया और सुनैना के लिए उसकी भावनाएं और प्यार उसके सारे डर और नकारात्मक सोच पर हावी हो गए। आदित्य सुनैना के लाल सूट और गुलाबी लबों पर अपने तपते होंठ रख दिए और एकदम प्यार से उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। सुनैना तो कब का ही आदित्य को इसके लिए मंजूरी दे चुकी थी, इसलिए आदित्य के स्पर्श का एहसास अपने होठों पर होते ही सुनैना के पूरे बदन में एक मीठी सिहरन दौड़ गई और उसके हाथ आदित्य के कंधे पर उसकी शर्ट को पकड़ते हुए कस गए। वो भी आदित्य का साथ देते हुए काफी प्यार से उसे चूमने लगी। आदित्य पर खुमारी और ज्यादा छा गई और उसी खुमारी में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सुनैना के होठों को चूमते हुए उसकी गर्दन तक आ गया था। सुनैना भी कसकर उसके गले लगी हुई थी। आदित्य की हर छुअन के साथ उसे बहुत ही रोमानी एहसास हो रहा था और वो इस वक्त उससे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी। अब आगे बढ़कर आदित्य का साथ देते हुए सुनैना ने उसकी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोले और उसके शोल्डर, नेक और चेस्ट पर काफी प्यार से सॉफ्ट किस करने लगी। सुनैना और आदित्य दोनों ही भूल गए थे कि अभी रात नहीं सुबह थी और इस तरह से एक दूसरे में खो जाने के लिए ये सही वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इतने दिनों की दूरियां और शिकायतें शायद सिर्फ इस तरह प्यार से ही मिट सकती थी उनके बीच। इसीलिए एक दूसरे के करीब आकर उन दोनों को बहुत ही सुकून मिल रहा था और बाकी सारी बातें कुछ देर के लिए जैसे वे दोनों ही भूल गए थे। आदित्य का हाथ सुनैना के ब्लैक टॉप से होता हुआ उसकी कमर के अंदर था। इस तरह सुनैना को पकड़ते हुए आदित्य ने उसे अपने एकदम करीब कर लिया था। सुनैना का एक हाथ आदित्य की गर्दन में और दूसरा आदित्य के हाथ पर था, जो कि आदित्य ने सुनैना की कमर के चारों ओर करके पकड़ा हुआ था। आदित्य उसे दीवार से लगाकर एकदम पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। उस कमरे में एकदम सन्नाटा था। उनके दोनों की तेज और गहरी सांसों के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और अगर कोई आवाज़ भी रही होती तो उन दोनों को एक दूसरे के आगे कुछ भी न दिखाई दे रहा होता और न ही सुनाई दे रहा होता। सारी बंदिशें आज टूटने को तैयार थीं और एक दूसरे से बेपनाह प्यार में डूबे बरसों से तन्हा दो दिल एक दूसरे में डूब जाने को तैयार थे। लेकिन तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए सुनैना का मोबाइल फ़ोन बज उठा। मोबाइल फ़ोन साइड में रखा हुआ था क्योंकि आदित्य से बात शुरू होने से पहले ही सुनैना ने ज्योति से बात करके फ़ोन वहीं पर रख दिया था। उन दोनों का ध्यान मोबाइल फ़ोन ही तरफ गया और वे दोनों जैसे एक दूसरे में डूब जाने से पहले ही इस खुमारी से बाहर आ गए। सुनैना, जो अब तक पूरी तरह से आदित्य का साथ दे रही थी, अब एकदम से रुककर अपने मोबाइल की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दूर से पानी दिखाकर प्यासा ही छोड़ दिया हो। सुनैना को इस तरह खुद से दूर जाते देख आदित्य का सारा मूड खराब हो गया, लेकिन वो फिर भी सुनैना का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता हुआ काफी आस भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। उसके ऐसा करने पर सुनैना शर्माते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। फ़ोन अभी भी बज रहा था तो उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया। आदित्य का ध्यान भी सुनैना के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ गया और उस पर विराज का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। सुनैना से पहले आदित्य की नज़र उस पर पड़ी और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, जिस पर अभी तक सुनैना के लिए प्यार और मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, एकदम से बदलकर सख्त हो गया और उस पर नाराज़गी, गुस्सा और जलन के भाव दिखने लगे। उसी नाराज़गी में उसने एकदम से सुनैना का हाथ छोड़ दिया। सुनैना आगे आकर कॉल रिसीव करती है तब आदित्य बोला, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, फिर से क्यों कॉल कर रहा है ये तुम्हें? आदित्य के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और सुनैना भी अब अपने ही झूठ में फंस चुकी थी जो उसने बस आदित्य को चिढ़ाने के लिए ही बोला था। लेकिन सुनैना अब कॉल रिसीव कर चुकी थी तो वो आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं देती और विराज से बात करते हुए बोली, हेलो विराज, क्या हुआ? सुनैना के मुंह से विराज का नाम सुनकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा जैसे सुनैना जो कुछ भी बोल रही थी वो सच है और शायद सुनैना को भी कहीं ना कहीं विराज पसंद है। दूसरी तरफ से विराज क्या बोल रहा था ये आदित्य को समझ में नहीं आया और उसने जानने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया और पटक कर वॉशरूम का गेट बंद कर दिया। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने से एक तेज आवाज हुई जिसे सुनकर सुनैना चौंक गई और साथ ही समझ गई कि आदित्य काफी ज्यादा नाराज है। शायद उसी की वजह से ये सोचकर उसने अपना सिर पीट लिया। तभी दूसरी तरफ से विराज कुछ बोला तो सुनैना का ध्यान फिर से फोन कॉल की तरफ गया और वो बोली, हाँ ठीक है, मैं बस निकल ही रही हूँ, मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। विराज के बोलने से सुनैना को याद आया कि वो तो एग्जाम के लिए जा रही थी और अभी ऐसे आदित्य की बाहों में सब कुछ भूल गई थी कुछ पलों के लिए। ऐसे वक्त में विराज का कॉल आना अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि उसने सुनैना को एग्जाम के लिए याद दिलाया, नहीं तो वो लेट हो जाती, क्योंकि 9:30 बजे एग्जाम थे और उसे कॉलेज पहुंचने में कम से कम आधा घंटा या इससे ज्यादा वक्त लगता है। बुरा इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसने अपने मन से कहानी बनाई थी ज्योति के कॉल को विराज का कॉल बताकर, वो अब सच में विराज के कॉल आने से उस पर ही भारी पड़ गई थी और आदित्य बिना मतलब ही उससे नाराज हो गया था। क्या करूं अब मैं, वो समझेगा भी नहीं इतनी जल्दी और फिर लेट भी हो रहा है एग्जाम के लिए, रहने देती हूँ, आकर बात करती हूँ शाम को। वॉशरूम के दरवाजे की तरफ से मायूसी से देखते हुए सुनैना खुद से बात करते हुए बोली। फिर आदित्य के बारे में सोचते हुए एक बार तो उसका मन किया कि वो रुक जाए और एग्जाम देना छोड़ दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये उसे क्या हो रहा है, उसकी पढ़ाई, उसका करियर जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, आज आदित्य के लिए वो उसे भी दांव पर लगा रही है, ये क्या हो गया है उसे? क्या सच में आदित्य उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? और होता भी क्यों ना, इस वक्त सिर्फ वही तो है उसकी लाइफ में, उसके अलावा तो कोई और भी नहीं है। नहीं नहीं, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस गलतफहमी हुई है, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से, बताया कि नहीं आता, और वो तो मैं उसे समझा सकती हूँ, वो इतना समझदार तो है ही, समझ जाएगा मेरी बात, लेकिन अभी एग्जाम देने जाना भी इम्पोर्टेंट है। खुद को समझाते हुए सुनैना अपने मन से एग्जाम छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से झटकती है
और फिर शीशे में देखती हुई सुनैना जल्दी से अपने बाल और कपड़े ठीक करती है जो काफी ज्यादा बिखरे हुए थे, और उसे एक बार फिर से अपने साथ आदित्य के होने का एहसास दिला रहे थे। उसे याद आया कि बेखुदी में आज वे दोनों शायद हद से ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी वो एहसास सुनैना को बहुत प्यारा लगता है। वो आदित्य के बारे में सोचती हुई एक बार फिर से काफी प्यार से मुस्कुराती है और फिर जल्दी से अपना बैग, मोबाइल और बाकी सारा जरूरी सामान लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल आती है और सीढ़ियां उतरने लगती है क्रमशः।